नमस्कार भारत, आज है 25 मई दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। असम में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभालने वाले सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, राज्य में शांति की स्थापना के लिए उल्फा से बातचीत को तैयार।
नथिंग कैन बी डन, सो मुझे लगता है कि उल्फा के जो भी प्रमुख नेता है सबको आना चाहिए।
केरल में आज पिनाराई विजयन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पाकिस्तान ने कहा, बिना डीएनए टेस्ट के नहीं हो सकती तालिबान कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेसी काफिले पर हमले के पूरे हुए 3 साल, पार्टी संकल्प शिविर से करेगी चुनावी शंखनाद।
उस शिविर में हम संकल्प लेंगे कि जो जिन उद्देश्यों को लेकर आप निकले थे उसे हम पूरा करेंगे।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। असम के नए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उल्फा के सभी धड़ों को बातचीत की मेज पर आने को कहा है। उनका कहना है कि बातचीत के जरिए ही सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीबीसी से बातचीत में सोनोवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि उल्फा शांति वार्ता में शामिल हो, इसमें उल्फा के सभी प्रमुख नेताओं को हिस्सा लेना चाहिए। घुसपैठ के मुद्दे पर सोनोवाल ने कहा कि उनकी सरकार असम की जमीन से घुसपैठियों को बेदखल करेगी। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन को सीरिया और इराक में 2 मोर्चों पर कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पूर्व सीरिया में कुर्द सेना की अगुवाई वाले गठबंधन ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रक्का के खिलाफ के करीब अभियान शुरू किया है। अमेरिका और रूस ने इस गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर इराक में सरकारी सेना का फलूजा में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान जारी है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक फलूजा में उसके लड़ाके सेना के अभियान का जवाब दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के नागरिकों को वीजा नियमों में छूट नहीं दी तो उनके देश की संसद प्रवासी समझौते पर रोक लगा देगी। इस समझौते के तहत ग्रीस से प्रवासियों को तुर्की वापस भेजा जा रहा है, इससे प्रवासियों की संख्या में कमी आई है। वहीं यूरोपीय यूनियन का कहना है कि जब तक तुर्की उनकी ओर से तय शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक वीजा नियमों में ढील नहीं दी जा सकती। यूरोपीय यूनियन की ओर से तय शर्तों में तुर्की के चरमपंथ पर रोक लगाने वाले कानून में बदलाव किया जाना शामिल है। तुर्की इससे इनकार करता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस्तांबुल में कहा,
"Şu anda 1 Haziran itibariyle
हमें दोबारा दाखिले को लेकर हुए समझौते पर 1 जून को आगे बढ़ना है। उन्हें वीजा छूट को लेकर 30 जून तक फैसला करना है। हमारे मंत्री यूरोपीय यूनियन से बातचीत करेंगे। अगर इस बातचीत में फैसला नहीं हुआ तो समझौते को लागू करने से जुड़े विधेयक को संसद से मंजूरी नहीं मिलेगी। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी न्याय विभाग का कहना है कि वो पिछले साल एक चर्च में 9 काले लोगों की हत्या के अभियुक्त के लिए मौत की सजा की मांग करेगा। अटॉर्नी जनरल लोरेटा लिंच की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले की वजह अपराध का तरीका है। इस केस की जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि डिनल रूफ नाम के इस व्यक्ति ने पीड़ितों की नस्ल की वजह से उन्हें निशाना बनाया। ये मामला पिछले साल जून में साउथ कैरोलिना में घटित हुआ था। क्यूबा की सरकार ने देश में छोटे और मध्यम निजी उद्योगों को वैधता प्रदान कर दी है। इस फैसले से क्यूबा में निजी उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। क्यूबा में अभी सरकार की ओर से रेस्टोरेंट चलाने जैसे कई छोटे रोजगारों को छूट हासिल है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को शपथ ग्रहण के बाद असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद बीबीसी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों से सख्ती से निपटेगी। उन्होंने उत्तर पूर्व में अलगाववादी गतिविधियां चला रहे उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेताओं से बातचीत की मेज पर आने को कहा ताकि राज्य में शांति कायम की जा सके। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने सर्बानंद सोनोवाल से खास बातचीत की और सबसे पहले पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
बेरोजगार युवा जो है इनके लिए हमें कदम उठानी होगी। उनके लिए कौशल विकास केंद्र हम हर ब्लॉक में प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोगों ने तय किए हैं ताकि हमारे जो युवा है युवा शक्ति को बढ़ावा मिले। दूसरी तरफ लोगों का बीच में जो भय भावना जो है अवैध घुसपैठियों की वजह से अभी यहाँ सदियों से बसे हुए हमारे जो भाई और बहन, इनका जमीन अभी अपना हाथ नहीं रहा और वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। विदेशी घुसपैठियों की ज्यादा बढ़ने के वजह से वो काफी असुरक्षित है, तो इसलिए उनकी जो भी मांग है और उनकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए हम विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ हम लड़ेंगे, उनका परिचय किया जाएगा और उनको असम की कोई भी जमीन पर उनका हक नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार उनका पहचान हो जाए तो मुझे लगता है कि हम यहाँ की जो भी सदियों से बसे हुए भारतीय नागरिक हैं सबको हम इंसाफ दे सकते हैं, सबको सही सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, उनका आर्थिक अवस्था मजबूत बनाने के लिए भी हम अपना कदम हम उठाएंगे।
सोनवाल जी, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि असम में जो है बांग्लादेश से घुसपैठियों का आना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे?
हाँ, रोकने के लिए तो एक ही उपाय है कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में जो सीमा है, सीमा को कम्प्लीटली सील करना होगा ताकि विदेशी अवैध घुसपैठिया किसी भी हालत में हमारे इलाका में नहीं पहुंच सके। इनके लिए सही कदम उठाया जाएगा और इंडो बर्मा बॉर्डर पर जो फेंसिंग बनाया जाएगा वो मजबूती से बनाया जाएगा ताकि कोई भी घुसपैठिया भविष्य में आने के लिए साहस ना करे, और जहां जहां वो विदेशी घुसपैठिया फंसा हुआ है उनको वहां से निकालने का हम काम करें।
चुनाव जब हो रहे थे उस समय ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो अब इस मसले पे क्या सोचा जा रहा है और उन मुसलमानों का क्या होगा फिर?
ऐसा है, हिंदू मुसलमान जो भी भारतीय नागरिक है सबका सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा, हमारे
चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों ना हो, जो आकर बस गए हो बांग्लादेश से।
ऐसा नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर आसाम समझौते के जो कट ऑफ डेट है उसी हिसाब से अगर वो वायलेट किया है तो उन पर हम कभी सहमत नहीं होंगे, उनका खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। यहाँ जो यहाँ के लोगों ने बांग्लादेश हमारी जो पड़ोसी राष्ट्र है तो उनमें से जो विदेशी घुसपैठिया हमारे इलाके में आए हैं तो उनको रोकने के लिए तो मुझे लगता है कि बॉर्डर फेंसिंग जल्दी ही बनाना बहुत जरूरी है।
जी, आप क्योंकि अब नव नियुक्त असम के मुख्यमंत्री हैं, ये बताइए कि उल्फा से बातचीत अभी नहीं हो रही है सरकार की, तो उल्फा से बातचीत के लिए क्या कदम उठाएगी, क्योंकि परेश बरुआ का गुट बातचीत नहीं कर रहा है, एनडीएफबी का एक फैक्शन है जो वो भी बात नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अब आपकी सरकार क्या कदम उठाने वाली है?
हम चाहते हैं कि जो हमारे पीस टॉक में, पीस डायलॉग में शामिल हो, क्योंकि ये तो डिस्कशन के जरिए इन चीजों का हल निकल सकता है, विदाउट डिस्कशन नथिंग कैन बी डन। तो मुझे लगता है कि उल्फा के जो भी प्रमुख नेता है सबको आना चाहिए।
जी, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, क्या पहल करेगी अब दोनों सरकारें
शांति के लिए? देखिए, असम में शांति फैलाने के लिए हम तो हमेशा प्रतिबद्ध है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं। इसलिए अगर इस विषय पर कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
ये थे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आज केरल में वामपंथी गठबंधन एलडीएफ के नेता पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयन को जमीन से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। वो सीपीएम की राज्य इकाई के सबसे लंबे समय तक सचिव रहने वाले नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। 19 मई को आए विधानसभा चुनाव के परिणामों में राज्य की 140 सीटों में से एलडीएफ ने 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बारे में हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने इमरान कुरैशी से बात की।
आज सुबह 9:30 बजे पिनाराई विजयन राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिव से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में वो शपथ लेंगे। उनके साथ करीब 19 मंत्री शपथ लेंगे, इसमें से 12 सीपीएम के होंगे, 4 सीपीआई के होंगे, जनता दल एस, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस एस के एक एक मंत्री होंगे। यहाँ एक फर्क जो है, पिछले यूडीएफ सरकार, कांग्रेस की जो यूडीएफ सरकार थी उसमें करीब 21 मंत्री थे, यहाँ 19 मंत्री होंगे। और उसके अलावा इस समारोह में सीताराम येचुरी और प्रकाश कराड़ दोनों मौजूद रहेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगी। पिनाराई विजयन करीब 15 साल सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और केरल कमेटी के सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, और उनका मुकाबला कभी भी उनके पहले उनके गुरु थे और उसके साथ ही उनका मुकाबला भी वीएस अच्युतानंदन के साथ हुआ। और जब ये मुख्यमंत्री पद का भी सवाल आया इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, तो उस वक्त भी वही मुकाबला हुआ था, मगर प्रकाश कराट और सीताराम येचुरी दिल्ली से तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे और वहां पिनरई विजयन को ही मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया गया था।
ये बताइए इमरान जी की मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह मिल सकती है?
जी बहुत सारे हैं, उनका तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर तो पहले ही फिक्स हो चुके थे, मतलब डॉक्टर थॉमस एजैक जो पहले भी उन वाम मोर्चा सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये जो मंत्रिमंडल में जो बना रही है वाम मोर्चा सरकार, इसमें शुरुआत से ही वो एक संकेत भेज रहे हैं कि उनकी सरकार साफ रहेगी और जो भी अनुभव के लोग हैं उनको जगह मिली है और उनके साथ जो पहले वक्त मंत्री बन रहे हैं उनमें भी एक तरीके से एक ना एक सब्जेक्ट में वो एक एक्सपर्ट हैं। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का वो एक प्रोफेसर ही हैं, पिछले वक्त भी वो प्रोफेसर एमए बेबी को ही बनाए थे। तो इसी तरह दरअसल ये एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार साफ रहेगी। ये इसलिए दिखाने के लिए कोशिश है कि पिछले यूडीएफ सरकार में बहुत सारे करप्शन के, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक सुझाव है आवाम मोर्चा का। और दरअसल इसी बात पे पिछले 2-3 दिनों से मलयालम सोशल मीडिया में बहुत इस बात पे चर्चा हुई है और बहुत तारीफ भी सुनने में आई है।
पिनाराई विजयन के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
अफगान तालिबान कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत की पुष्टि हो गई है और ये अफगानिस्तान में शांति स्थापना की कोशिशों की दिशा में मील का पत्थर है। लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री चौधरी निसार ने एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि पाकिस्तानी प्रशासन इस बात की तब तक पुष्टि नहीं कर सकता जब तक शव का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू के संवाददाता शहजाद मलिक से बात की।
पाकिस्तान के वजीर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज उस वक्त तक इस खबर को कंफर्म नहीं कर सकती जब तक उसका डीएनए टेस्ट न ले लिया जाए, क्योंकि उनके बकौल जो डेड बॉडीज हैं वे उनकी जो शनाख्त है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये डेड बॉडी हैंडओवर करने के लिए एक शख्स ने जिसका ताल्लुक उन्होंने अफगानिस्तान से बताया है, उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी से रब्ता किया है कि डेड बॉडी उनके हवाले की जाए, तो उनसे इस शर्त पे उनको डेड बॉडी दी जाएगी कि अगर उनका डीएनए टेस्ट जो है जो डेड बॉडी है उससे मैच कर गया तो फिर उनको हवाले ही डेड बॉडी की जाएगी और उसके बाद ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस बात को कंफर्म करेंगी कि अमरीकी ड्रोन हमले में जो हलाक होने वाला शख्स है वो तालिबान कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर ही है।
जी, पाकिस्तान की सरकार तो पुष्टि नहीं कर रही है मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत को लेकर। यहाँ ये जानना चाहेंगे कि अब जो डीएनए टेस्ट करने की बात की जा रही है तो क्या पाकिस्तान सरकार किसी उनके परिवार के परिजनों को बुलाएगी इस टेस्ट के लिए?
जी, इस बारे में उन्होंने चौधरी निसार अली खान ने इसको क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन लग तो यही रहा है कि जो जिन्होंने रब्ता किया है वो डेफिनेटली जो बंदा मारा गया है उसके उसी के रिश्तेदार है। तो अगर तो वो मुल्ला अख्तर मंसूर है तो डेफिनेटली जिन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ जो रब्ता किया है उसके खासतौर पर डेड बॉडी हैंडओवर करने के लिए, तो इसका जो लग यही रहा है कि वो उसका ताल्लुक भी इस जो हलाक होने वाला शख्स है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर है उसका रिश्तेदार ही होगा।
जी, मीडिया में तो तरह तरह की खबरें आ रही हैं मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत को लेकर, लेकिन क्या तालिबान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इस बारे में?
जी, अभी तक तो जो पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जो हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं कि तालिबान ने इसकी हलाकत के बाद तालिबान अपना नया अमीर जो है या नया हेड जो है उसके लिए उन्होंने 5 नामों पे गौर करना शुरू कर दिया, उन 5 में से कोई नया तालिबान का नया अमीर होगा, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर उसके बारे में ये नहीं, उन्होंने तालिबान ने अभी तक इसकी इस बात की तस्दीक नहीं की कि ड्रोन हमले में जो हलाक होने वाला शख्स है वो मुल्ला अख्तर मंसूर ही है। और अब कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर तो बल्कि कुछ खबरें ये भी आई हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर का एक ऑडियो बयान भी सामने आया है आज ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बंदा इसमें जो मारा गया है वो ड्रोन हमले में नहीं मारे गए बल्कि वो जिंदा है। तो इससे तो लगी इस तरह बड़ी कंफ्यूजन जी सामने आ रही है, बड़ी एम्बिग्युइटी है कि असल सूरतेहाल है क्या। और असल सूरतेहाल ये उसी वक्त ही वाजे होगी जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस बात को कंफर्म करेंगे कि जो ड्रोन हमले में जो शख्स मारा गया है वो मुल्ला अख्तर मंसूर ही है।
ये थे बीबीसी उर्दू के संवाददाता शहजाद मलिक।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के लाख टालने के बावजूद मंगलवार को उन्हें सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए दिल्ली आना ही पड़ गया। सीबीआई ने उनसे विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछे। सीबीआई के शिकंजे में फंसे हरीश रावत के सामने फिलहाल एक और मुश्किल है और वो है राज्यसभा की खाली हो रही एक सीट पर वो किसे उम्मीदवार बनाए। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
अदालती आदेशों के बाद बहाल हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने इस बार दो और मुसीबतें हैं। पहली मुसीबत सीबीआई जांच की है जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने पहले अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर अधिसूचना रद्द करवाई और फिर नैनीताल हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर दी कि सीबीआई जांच रोक दी जाए। राज्य कैबिनेट ने सीबीआई जांच की राष्ट्रपति शासन के दौरान की प्रशासनिक अधिसूचना को तो रद्द कर दिया लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी। उधर सीबीआई ने भी राज्य कैबिनेट के आदेश को नहीं माना और दोबारा समन जारी कर दिया। अब मरते क्या न करते हरीश रावत को सीबीआई के सवालों का जवाब देने दिल्ली जाना ही पड़ा।
मैंने ये निर्णय लिया मेरी पार्टी के सदस्य
बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रावत को आखिर सीबीआई के सामने जाने से इतना डर क्यों लग रहा है, वो क्यों बचना चाह रहे हैं। जाहिर है ये सवाल रावत पर नए हमलों की तरह है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट,
ये गलत किया इन्होंने कैबिनेट से खत्म किया। जैसे आज जा रहे हैं सीधे सीधे जाना चाहिए था आगे से पूछताछ करके कहना चाहिए था। पूछताछ ही तो हो रही है, क्या हो रहा था उसमें मुझे बताइए।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अदालतों से मिली फटकार और हार को पचा नहीं पा रही है लिहाजा रावत सरकार को किसी न किसी बहाने टारगेट कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट,
तो अब उन्होंने इस सीबीआई को एक नए हथियार के रूप में प्रयोग करके वहां पर फिर से वो चोर दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हम न्यायालय के हर आदेश का पालन भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है उस पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
उधर हरीश रावत के सामने एक नई मुश्किल राज्यसभा सीट के लिए उपयुक्त नेता को लेकर भी है। यूं तो वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ही तय करेगा लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अलावा सरकार को समर्थन दे रहे पीडीएफ ने भी अपना दावा ठोका हुआ है। सुनिए मुख्यमंत्री हरीश रावत को।
पार्टी अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है, जो निर्णय करेंगे हम पालन।
आप इसके नाम तो
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। महेंद्र सिंह जी के वक्त में जरूर मुझसे पूछा गया था कि क्या आपको इनाम देना चाहेंगे।
यही मुश्किल बीजेपी की भी है। विधानसभा का मौजूदा गणित उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी उसे हल्की सी आशा ये है कि राज्यसभा की दावेदारी के मुद्दे पर कांग्रेस का स्थानीय टकराव उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन क्या वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी इस पर वो खामोश है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय गोयल,
उत्तर में पहली बार सरकार बन रही है तो वहाँ हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वहाँ से आने के बाद कुछ न कुछ इस बारे में जरूर तय करेंगे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का नाम राज्यसभा सीट के लिए सामने आया है लेकिन सरकार को समर्थन दे रहा जनतांत्रिक मोर्चा यानी पीडीएफ भी अपने उम्मीदवार को लिए टिकट चाहता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की ओर से कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी के नाम हो सकते हैं। लेकिन इन सब अटकलों के बीच पिछली तमाम दुश्वारियों को काट कर मुख्यमंत्री पद पर दोबारा पहुंचे हरीश रावत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तो सीबीआई जांच का ही है जिसके लिए पूछताछ में उन्हें अब 7 जून को फिर से दिल्ली बुलाया गया है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
छत्तीसगढ़ में बस्तर की झीरम घाटी में माओवादी हमले के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत 27 लोग मारे गए थे। देश में किसी राजनीतिक दल पर किए गए माओवादियों के सबसे बड़े हमले की जांच एनआईए ने की थी, लेकिन कोई नतीजा ना निकलने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की अनुशंसा की है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
आज से 3 साल पहले 25 मई के दिन ही बस्तर की झीरम घाटी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माओवादियों के हाथों मारा गया था। राज्य में एक बड़ा तबका मानता है कि माओवादियों ने चुन चुन कर कांग्रेस के नेताओं को जिस तरीके से मारा उसमें कहीं कोई राजनीतिक साजिश थी। हालांकि माओवादियों ने समय समय पर कई बयान जारी कर झीरम हत्याकांड पर अपना पक्ष रखा है। सीपीआई माओवादी के प्रवक्ता गुडसा ओसेंडी का यह बयान पुराना है, लेकिन माओवादी इसी बयान को लगातार दोहराते रहे हैं।
अगर उत्पीड़ितों की ओर से यह प्रतिरोध नहीं होता, यह हिंसा नहीं होती, तो अब तक बस्तर या आदिवासियों का अस्तित्व बहुत भारी खतरे में पड़ चुका होता।
लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञ माओवादियों के बयान और एनआईए की रिपोर्ट को प्रायोजित बताते हुए खारिज करते रहे हैं और झीरम हमले पर राजनीति जारी है। कांग्रेस पार्टी ने आज से झीरम कांड की बरसी पर बस्तर से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। हालांकि अभी राज्य के विधानसभा चुनाव में 2.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि बुधवार से राज्य में चुनाव का शंखनाद होगा।
उस शिविर का नाम संकल्प शिविर दिया है और जो नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जी ने जो परिवर्तन का शंखनाद किया था, परिवर्तन हम लोग नहीं कर पाए। उस शिविर में हम संकल्प लेंगे कि जो जिन उद्देश्यों को लेकर आप निकले थे उसे हम पूरा करेंगे।
जाहिर है भूपेश बघेल के इस सवाल का जवाब भी आना ही था। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी चुटकी ली।
नहीं, अच्छा है, देखिए राजनीतिक दृष्टि से कुछ ना कुछ तो करना है, 2.5 साल का भी समय है, तो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी करते हैं। हम लोग अपना प्रयास लोक स्वराज में किए, वो अपना प्रयास करेंगे।
लेकिन इन राजनीतिक बयानों से अलग कुछ लोग हैं जो झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले का दंश आज तक झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर अमर सिंह बाघ की ड्यूटी कांग्रेस के काफिले में थी, लेकिन 25 मई 2013 के हमले में उन्हें गोली लगी और तब से ही वे बिस्तर पर हैं।
घाटी जो है चढ़ते चढ़ते फिर हमारी काफिला जो है फिर बीच में जाके फंस गई और उसी मतलब एम्बुस में फंस करके जब गोलियां बरसात की तरह चल रही थी तो सब अपने अपने छुपने के लिए कई लोग छुप गए। मेरे को नए कूल्हे में गोली लगी थी, हड्डी टूट गई, इसी तुरंत हड्डी टूट गया और पैरालिसिस हो गया तत्काल, तो मैं वहीं जमीन पड़ा रहा।
अमर सिंह बाघ जैसे कई लोग हैं जो उस हमले में जिंदा बच गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा का कहना है कि झीरम घाटी में हुए हमले के बाद ही पुलिस माओवादियों के खिलाफ और आक्रामक हुई।
पुलिस विभाग के जवान वहाँ लगे हुए हैं और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और मुठभेड़ में बहुत सारे नक्सली भी मारे जा रहे हैं, लगातार उन क्षेत्रों में हम दबाव बनाए हुए हैं।
लेकिन क्या झीरम घाटी में हुए हमले में कहीं कोई राजनीतिक साजिश थी? अदालत में मामला होने का हवाला देकर हमारे इस सवाल को गृहमंत्री ने टाल दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी चुनावी तैयारी की जिस तरीके से शुरुआत की है उसे टालना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL 9 में कल पहला क्वालिफायर मुकाबला बेंगलोर में खेला गया, जहां बेहद रोमांचक मैच में विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुजरात के लॉयंस के शिकंजे से निकलने में कामयाब रही और उसने 4 विकेट से मैच जीत लिया। विजयी रन 18.2 ओवर में आया। वैसे बेंगलोर के सामने जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य था और लगता था कि ये मुकाबला बस एक तरफा साबित होगा, लेकिन जब केवल 68 रन पर बेंगलोर के 6 विकेट गिर गए और मैच लगभग गुजरात की पकड़ में था, ऐसे में AB डिविलियर्स ने दिखाया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मुकाबले में क्या कुछ कर सकते हैं। AB डिविलियर्स ने कट, पुल, हुक और रिवर्स स्वीप यानी क्रिकेट के तमाम शॉट्स बखूबी खेलते हुए नाबाद 79 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने केवल 47 गेंदों का सहारा लेते हुए 5 चौके और 5 छक्के भी जमाए। संकट की घड़ी में उन्हें साथ मिला इकबाल अब्दुल्ला का। जिन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए। इकबाल अब्दुल्ला और एबी डिविलियर्स के बीच सातवें विकेट के लिए नाबाद 91 रन जुड़े। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल के फाइनल में भी पहुंच गई। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर गुजरात लायंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 158 रनों पर सिमट गई। आरोन फिन 4, ब्रेंडन मैकुलम 1 और खुद कप्तान सुरेश रैना भी केवल 1 रन बना सके। वो तो ड्वेन स्मिथ ने 73 और दिनेश कार्तिक ने 26 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बेंगलोर के शेन वाटसन ने 29 रन देकर 4 और इकबाल अब्दुल्ला ने 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आज आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उधर साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में कल पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे, पहली वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल पहले दौर का मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। वहीं महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स और उनकी बहन वीनस विलियम्स भी अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही। लेकिन महिला वर्ग में ही सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब तीसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। उन्हें गैर वरीयता हासिल नीदरलैंड्स की किकी बर्नेट्स ने 6-2, 3-6, 6-3 से मात दी। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलो भार वर्ग में भारत की सोनिया लाथेर सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना कजाकिस्तान की अईजहान खोजा बेकोवा से होगा।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। तमाम अखबारों को खंगालने के बाद वात्सल्य राय स्टूडियो में पहुंच गए हैं। जी वात्सल्य, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी अमरीश जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन के दौरे पर हैं। इस बीच में भारत में जो बड़ी खबर राष्ट्रपति के हवाले से है कि वो जो एक अध्यादेश आया था जिसमें केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नीट है उसके लिए एक अध्यादेश लाकर राज्य बोर्डों को एक साल के लिए बाहर कर दिया है, राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे पहली खबर बनाया है। हिंदू और जनसत्ता की लीड खबर भी यही है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर समेत बाकी अखबारों ने भी इसको प्रमुखता से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस की जो एक खबर मैं देख रहा हूँ उसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन विधायकों ने जीत दर्ज की है उन्होंने एक शपथ पत्र के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दस्तखत किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि हम पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, पार्टी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। एक और खबर जिसको प्रमुखता से जगह मिली है वो पटना से कल दिल्ली एक एयर एम्बुलेंस आ रही थी उसकी नजफगढ़ में क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। नवभारत टाइम्स ने इसका हेडिंग दिया है दोनों इंजन बंद पर खेत में सेफ लैंडिंग। सभी अखबारों ने, ज़्यादातर अखबारों ने तस्वीरें छाप कर इस खबर का जिक्र किया है और इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। असम में सर्वानंद सोनोवाल ने कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, इस खबर को भी प्रमुखता से जगह मिली है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट शहरों की एक सूची तैयार की है उसमें लखनऊ को पहला स्थान दिया गया है। ज़्यादातर अखबारों की राय है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं इसको लेकर उत्तर प्रदेश को अहमियत दी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एंकर खबर का मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा, वहाँ गुजरात के एक ऐसे स्कूल की बात की गई है जहाँ 10वीं क्लास में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। असम के नए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उल्फा के सभी धड़ों को बातचीत की मेज पर आने के लिए कहा है। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की कल हुई बैठक में ग्रीस को बेलआउट देने का फैसला किया गया है। 19 मंत्रियों ने कहा कि ग्रीस आर्थिक सुधार की वजह से 11.5 अरब डॉलर की अदायगी संभव हो पाई है ग्रीस को। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन को सीरिया और इराक में दो मोर्चों पर कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पूर्व सीरिया में कुर्द सेना की अगुवाई वाले गठबंधन ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रक्का के करीब अभियान शुरू किया है। इराक में सरकारी सेना फलूजा में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है। तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयब अरदोगान ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के नागरिकों को वीज़ा नियमों में छूट नहीं दी तो उनके देश के सांसद प्रवासी समझौते पर रोक लगा देंगे। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। थोड़ी देर बाद आपसे हमारी मुलाकात विश्व भारती में होगी। आज नमस्कार भारत को आप तक पहुंचाने में अजित सारथी ने तकनीकी सहयोग दिया। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।